Welcome to Market Mansa, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. Aaj ke ant mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur charcha karenge. Charcha ke liye aaj hamare studio mein maujood hain varishth aarthik patrakar Puneet Jain. Puneet, karyakram mein aapka swagat hai.
Dhanyawad Amit.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन.
स्टॉक मार्केट फॉल आफ्टर अ डेज बीटर ऑन वीक ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स. सेंसेक्स डिक्लाइंड बाय 454 पॉइंट्स. निफ्टी एंड्स बिलो 22,100 मार्क. गवर्नमेंट रोल्स आउट एन ई व्हीकल पॉलिसी टू इनकरेज एंड बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स. एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड फॉर फरवरी 2024 एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, बोस्टिंग द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ इन द पास्ट 11 मंथ्स, सेज कॉमर्स सेक्रेटरी.
आर्थिक सुर्खियों में वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर बाजारों में कल की राहत के बाद आज फिर गिरावट. सेंसेक्स में 454 अंक का नुकसान. निफ्टी भी 22,100 के नीचे दर्ज. सरकार ने देश में ई वाहन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति का शुभारंभ किया और फरवरी 2024 के दौरान देश के कुल निर्यात उम्मीदों से बढ़कर पिछले 11 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज हुआ. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज भी मंदी का दौर रहा. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स का 0.6% की गिरावट से 454 अंक लुढ़ककर 72,643 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% के नुकसान से 123 अंक गिरकर 22,023 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट रही जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा.
Benchmark indices ended lower today as cautiousness towards mid and small caps have continued to drive market sentiment, dampening the broader market. The 30-share Sensex plunged 454 points to 0.62% to close at 72,643, and NSE Nifty declined 123 points or 0.56% to finish at 22,023. Among Sensex firms, Mahindra & Mahindra plunged over 5%. Tata Motors, NTPC, HCL Technology and Larsen & Toubro were among the other laggards. On the other hand, Bharti Airtel, Bajaj Finance, Maruti Suzuki, Bajaj Financial Services and IndusInd Bank were among the gainers. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index hit 0.51%, while the Small Cap Index went up by 0.25%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, the oil and gas sector declined 2.25%, energy sector slipped 1.95% and auto fell 1.75%. On the other hand, telecom rose over 1%, services declined 0.6% and commodities jumped 0.3%.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82.79 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक गिरावट से 103.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. पुनीत, शेयर बाजार में अगर दो दिन पहले की बात करें तो जो बाजार ने गोता लगाया था कल ऐसी नीचे गई थी कि ठीक है वो गोता तो लगा लेकिन बाजार अभी वापस से खड़े होने के मूड में आ गया. आज की स्थिति फिर कहीं न कहीं थोड़े से भरोसे को डगमगाता है. क्या माना जाए अभी बाजार में वो जो टेक्निकल करेक्शन या मुनाफा वसूली की जो बात कहते थे वो दौर अभी जारी रहेगा या अभी भी बाजार में कुछ संशय है क्योंकि इस तरह की भी बीच में खबरें आ रही थी और सरकारी तौर पे भी इस तरह की बातें आ रही थी कि शायद शेयर बाजार ओवरवेटेड है या उसमें कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन की भावना हो रही है. नहीं, इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे थे. पूरे तौर पर किस तरह से आंकते हैं विशेषज्ञ तौर पर?
तो अमित, आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों और पर्टिकुलरली जो सप्ताह जो गया है इससे काफी हमने उठापटक देखी है बाजार में. और ओवरऑल अगर हम देखें तो सप्ताह से 2% इंडेक्स में गिरावट आई है जो हेडलाइन इंडेक्स है और स्मॉल कैप एंड मिड कैप में करीब 3-7% की गिरावट आई है. तो डेफिनेटली ये सप्ताह अगर इसको हम स्टैंड अलोन देखें तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी. लेकिन अगर हम पिछले एक वर्ष से इसकी कंपेरिजन करें तो आप देखेंगे कि जो इंडेक्स है पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है वो करीब करीब दो गुना हो गए एक वर्ष के अंदर. और पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत काफी गर्मी से मैं कहूंगा वहां पर इंडेक्स करीब करीब 3 गुना हुआ पिछले वर्ष में। तो यदि मैं ये आंकड़े देखता हूं तो मुझे लगता है जो गिरावट आई है पिछले सप्ताह वो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, करीब 2% फ्रॉम द पीक हम अभी हैं पीछे। मुझे मेरा अपना अनुमान ये रहा है कि मार्केट थोड़ी वो बॉक है, जैसे आपने कहा वो प्राइस है, लीवरेज भी है, काफी बड़ी पोजीशन है इस वक्त बाजारों में। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं उसमें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक फ्यूचर्स पोजीशन है वो करीब 3.5 लाख करोड़ की वायदे बाजार में खड़ी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोजीशन है। इसी प्रकार से जो लीवरेज है, जहां जो ब्रोकरेजेस ने जो लोन्स दे रखे हैं छोटे निवेशकों को, वो करीब 55,000 करोड़ के, यानी 1 लाख करोड़ के शेयर्स जो उधार के पैसा लेकर के इसमें निवेश हुआ है। ये आंकड़े ऑफिशियल आंकड़े। तो मैं कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि बाजार में बहुत ओवरबॉट है, और हमने पिछले भी इस बात का जिक्र किया कि कॉशियस रहना मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी का काम होगा।
सो इज देयर अ मार्जिन कॉल राइट नाउ बाय ब्रोकरेज फर्म्स टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, इज दैट व्हाई यू सीइंग अ शॉर्ट टर्म सेलिंग राइट नाउ?
सो अर्जुन, दैट्स व्हाट वी सॉ डे बिफोर यस्टरडे, देयर वाज अ बिग मार्जिन कॉल and we saw the sell down, and the mid-cap index, you will remember, fell by almost 5% day before yesterday, and then kind of recovered yesterday, and again today it was very weak in the beginning. So it's a very highly leveraged space, and I think many investors are not following the fundamentals of the market. They are chasing after returns, and again, like, we must remember that the markets have given very handsome returns in last 1 year. Some people think that it may be a good time to step back, no, and take profit.
पुनीत, लेकिन आमतौर पर एक आम निवेशक जो होता है ना, वो जब तेजी का दौर चलना शुरू होता है तो वो उस समय जागृत होता है या उस समय बाजार में प्रवेश करता है जब मार्केट काफी ऊंचे लेवल पे होती है। हम चाहे मिड कैप की बात करें, चाहे स्मॉल कैप की बात करें, चाहे सेंसेक्स पैक की बात करें, और ऐसे समय पे जब वो निवेश करता है और उसके थोड़े दिन बाद ही रिकवरी का दौर शुरू हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसे या संकट को भी एक नई चुनौती पैदा कर देता है। आपका क्या मानना है कि आमतौर पे अब भारतीय निवेशक इन सब दौर से बाहर निकल आया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा निवेश है और वो भी एक भरोसे की ही बात कही जा सकती है?
देखिए, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और इसको एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जो, और मैं कहूंगा भारतीय निवेशकों ने उसको अपनाया बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत बड़ा, यदि अगर हम बात करें तो शायद 60-70% निवेशक ऐसे हैं, इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बहुत जुडिशियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में उनको अच्छा फायदा होगा। लेकिन कुछ कुछ लोग आप कह सकते हैं जो कि जिनको लगता है कि बहुत आसान है पैसा बनाना और जल्दी पैसा बन सकता है, यहाँ रिस्क लेकर के, यहाँ किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेकर के वो जल्दी पैसा बना सकते हैं, मुझे लगता है ये मार्केट उन लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, उन लोगों के लिए ज्यादा रिस्की है, और हम उन्हीं को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर साइक्लिकल मार्केट है, तेजी मंदी का दौर चलता रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो सही रास्ते पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना और स्पेकुलेटिव गेम्स करना बहुत मुश्किल है।
पुनीत, सेक्टोरल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दौर में ना खासतौर पर सरकारी बैंक या बैंकेक्स जो था वो बहुत अट्रैक्टिव था और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे दौर में जब अगर बाजार में कहीं ना कहीं सुधार आता है या कहीं बाजार में गिरावट आती है, तो आपके नजरिए से वो कौन से अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जो मध्यम से लंबे समय के लिए बेहतर निवेश का माध्यम हो सकते हैं?
देखिए, आपने, मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से हम बात करते हैं और हमने देखा कि बहुत बड़ी तेजी आई है वहां, एक ऐसा लगता है, इनफैक्ट इस वीक यदि हेडलाइन इंडेक्सेस जो निफ्टी और सेंसेक्स है 2% गिरे हैं, तो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स जो है वो 9% गिरा है। तो इससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर ज्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन मैं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की वैल्यूएशन पहले बहुत कम थी और वो वहां से रिकवर हुई, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि वहां बबल है, लेकिन बहुत छोटे रस्ते में ऐसा हुआ है, बहुत शॉर्ट टर्म में हुआ है, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होना और एक बहुत शार्प फॉल आना या करेक्शन आना एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि अभी भी यदि हम क्षेत्र देखें जहां पर फाइनेंशियल्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो वहां अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफी सही है, वहां पर बबल नहीं है। ये हो सकता है कि यहां कंसोलिडेशन हो मार्केट के अंदर। तो ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये सब क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन मैं ये राय देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जल्दी एक पैसा बनाने के लिए कोशिश न की जाए, एक सोच समझ कर निवेश करना है।
टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस टुडे विद आवर एमिनेंट एक्सपर्ट पुनीत जैन। पुनीत, वी टॉकिंग अर्लियर अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, यू नो दे रियली हैव डन वेल, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। What about the buying interest that you're seeing from FIIs, FPIs? What are they seeing in the market? For instance, today, DIIs were the net sellers and they profit booked. And the FIIs are once again the net buyers into the market. So what's their strategy? How are they looking at the public sector banks? How are they looking at the banking index? How are they looking at the market?
So, Arjun, one, of course, initially, in fact, last year we saw some selling by FIIs. But interestingly, again, this year we have seen FIIs buying into India. Interestingly, today, particularly today, was an important day because we saw the rebalancing of FTSE indices today, and where the Indian stock indices, the weightage for Indian stocks, that has gone up a lot. And it is the Chinese stocks where the weightages have gone down. So we saw a lot of inflows into Indian markets today on account of rebalancing of the FTSE. Similarly, a few days back, last month, you remember, there was a rebalancing of the Morgan Stanley indices. And again, you know, a lot of Indian companies were included and the weightages went up. And we saw almost $1 billion worth of net flows because of that rebalancing. So what is happening is that we are seeing that Indian markets, Indian stocks, Indian economy being re-rated by the foreign investors. And a lot of these companies got included in global indices. So while the macro numbers or macro picture, you know, on a certain plane may not be very attractive, but when we look at Indian markets vis-a-vis other emerging markets, particularly China, which was a very heavy-weighted index, heavy-weighted market, which has gone down a lot. And therefore, I think FIIs are preferring to invest in India rather than, you know, invest in other countries. So that has been one positive factor. And the financials, of course, are the largest weighted sector in the index.
But are they looking at fundamentals? For instance, in China, you have their key sectors linked to the real estate market, and that has seen a tremendous plummet. You have developers who have defaulted in a major way, and the central bank or the central government is not willing to bail them out, unlike the US. So in India, we don't have that kind of central linkage to any one core sector like the real estate. You know, it's quite diversified. What are the FIIs really looking at when they value a particular stock?
So interestingly, when we talk about markets like China or Russia, Russia is a very oil-heavy market. No, 80% of the market cap in Russia is linked to oil companies. Similarly, in China, we saw very large fintech companies, they took charge of the market cap. Or we saw the realty companies, they became very important. In India, if you look, I think we have a very diversified market. So we have all sectors, financials, manufacturing, electronics, healthcare, services. It's a very well-diversified market. We are the fourth largest economy in the world. We have a market which is almost the second or third largest in the world. So clearly, I think FIIs have to be in India, particularly when other economies, large economies like China, they're not doing so well. In fact, I'd like to point out here that Chinese market hit 20-year low. When we were hitting all-time highs last month, Chinese market was hitting a 20-year low. So you can imagine, I mean, why would FIIs put money there?
So there's arbitrage going on right now. They're pulling off from there, coming in here.
And a lot of money, a lot of stocks were sold down in China, and that money was shifted to India.
अपनी दो चीजें और इसके साथ साथ कुछ और जैसे आज की हमारी हेडलाइंस में भी हैं कि हमारा जो विदेश व्यापार है और मतलब खासतौर पर निर्यात है वो भी 11 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर है. और अगर हम सराफा बाजार माना सोने चांदी की कीमतों के बारे में बात करें, ये बात इस समय मैं अभी इसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम जब शेयर बाजार को देखते हैं तो शेयर बाजार के साथ साथ जैसे अर्जुन ने कहा रियल्टी, और उसके साथ हम अगर सराफा को देखते हैं, ये सारी चीजों का जो कमोबेश एक तालमेल है वो क्या तीनों इस तरफ से तेजी है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये उम्मीदें हैं या बाजार में इस तरह की सुगबुगाहट है कि सोने और चांदी शेयर बाजार के कदमताल करते हुए भी आगे बढ़ेंगे.
अब मैं देखिए, मैं आपको बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है. अगर ग्लोबल मार्केट को देखिएगा, मैं इसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में टेक्निकल रिसेशन था, जर्मनी में रिसेशन हुआ, दो क्वार्टर में लगातार डिक्लाइन हुआ, चाइना में रिसेशन हुआ एक प्रकार से, मतलब वहां पर रिसेशन नहीं हुआ लेकिन इकोनॉमी ग्रोथ भी बहुत कम आ गई, 2.5% आ गई, और जापान में ऑफिशियल रिसेशन हुआ. तो यानी जो बड़ी बड़ी कुछ इकोनॉमी थी वहां पर इकोनॉमिक रिसेशन था, लेकिन दो बड़ी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एक यूएसए और एक इंडिया, यहां पर हमने बहुत ग्रोथ देखी, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो कुछ कमोडिटीज में और कुछ बड़ी कॉमोडिटीज में हमने री एलोकेशन किया.
फाइनल क्वेश्चन ऑन द सेंसेक्स, व्हाट्स गोना हैपन ऑन मंडे?
It's always the most difficult question to answer in the markets. We really don't know what's happening in the short term, but I think markets will remain cautious and will remain. So it will be wiser to stay on the sidelines and not be aggressive in the markets right now. If you have profits to book, I think it will be wise to take some money off the table.
खबर डालते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों पर. एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा, हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में आधा प्रतिशत की बढ़त भी दर्ज हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 2%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.4% और जापान का निकेई 0.3% की गिरावट से बंद हुआ. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मामूली तेजी नजर आई. सत्र के दौरान फ्रांस, जर्मनी और लंदन के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए.
We have seen European markets being linked to interest rates, so what the central bank decides, like the Bank of England. But we haven't seen the same case with India, even though interest rates are also relatively high if you look at consumption patterns right now. How do you relate the European markets right now to Sensex and Nifty when you look at central bank decisions?
So European markets clearly have been underperforming Indian and US markets. So two markets again which have really stood out from others are Indian and US markets, which have continued to rise. In comparison, the European markets were lower because there is a technical recession in US, in Europe already. And Japan, of course, was a different case again because there was a recession, but the markets went to all time.
UK and Japan both are in technical recession.
So clearly, I think those markets are bothered about economic growth, the opportunities are less, interest rates are not coming down for them in the short term. So I think the European markets are more sensitive to those factors. In India, we have this world-beating economic growth of 7%. I think that kind of overshadows every other concern vis-a-vis the interest rates or any other economic factor.
Let's now look at the U.S. market now. U.S. Market ended lower yesterday as Treasury yields declined following the release of hotter-than-expected U.S. producer price inflation data. At closing bell, the Dow Jones Industrial Average declined 0.35% and the S&P 500 slipped 0.3%. The tech-heavy Nasdaq Composite Index fell 0.3%. Typically, Sensex follows what the U.S. markets are doing, what the indices are doing. So they were in the red after a very, very long time. How would you rate the U.S. economy right now, especially when it comes to inflation and the tech sector? Because, you know, all your most valued companies are from the tech sector.
So you're right. I mean, the U.S. market is dominated by what is called Magnificent Seven. So with all the top seven technology companies, those stocks, they have been dominating the U.S. market. Clearly, the U.S. economy is now very driven very strongly by technology sector. And I think they will continue to grow. They're beating the world economic growth already. And I think U.S. will continue to be the leader as far as the economic growth on the global scale is concerned.
What about inflation? Because that has a direct impact on Europe as well.
So they were expecting inflation to come down and markets were factoring that in. We obviously saw that inflation did not come down that much. Yesterday the reading was very high. And therefore the bond yields that you mentioned in your report, the bond yields went back to 4.28. This is pretty high as far as U.S. is concerned. So I think they are concerned about it, but I hope by end of the year, based on the basis of high base effect, the inflation rate will come down.
केंद्र सरकार देश में ई वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति लेकर आई है. इसका लक्ष्य ई वाहन के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है. ई वाहन नीति का उद्देश्य क्रूड ऑयल के आयात, व्यापार घाटे और वायु प्रदूषण को भी कम करना है. नई नीति के तहत कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 4,150 करोड़ रूपये रखी गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. कंपनियों के पास विनिर्माण सुविधा तैयार करने और ई वाहन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 वर्ष का समय होगा. संभवतः ये बहुत ही बेहतर समय है, क्योंकि अभी तक जो ये ई वाहन नीति है इसके मामले में कुछ था नहीं. हालांकि घरेलू कंपनियां अपने तरफ से बहुत सारी चीजें कर रही थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि खासतौर से दुपहिया वाहन ऐसे थे जिसमें एक मेजर सेगमेंट जो था वो निर्यात पर ही, आयात पर ही आधारित था. इस नीति से कुछ बदलाव की उम्मीद नजर आती है?
बिल्कुल अमित, मुझे लगता है कि पहले सरकार ने कई प्रयास किए, जैसे स्कीम जो पॉलिसी थी उसके तहत सब्सिडीज देकर के ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की कोशिश की गई, और अब मुझे लगता है लॉजिकल फर्दर स्टेप है, क्योंकि अब हम एक सब्सिडाइज करने की बजाय हम एक पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाए हैं जिसमें कि, और जैसे इस नीति के बेसिस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टेस्ला जो दुनिया की बहुत बड़ी एक ई व्हीकल कंपनी मानी जाती है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहती है, और वो शायद इस नीति के आने के बाद अब वो शायद इंडिया में आएंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ये पॉलिसी जो है काफी फायदेमंद।
व्हाट अबाउट सप्लाई चेन नेटवर्क?
सो अर्जुन, यूजुअली इट ग्रोज लाइक इफ यू सी द मोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वी डिड नॉट हैव एनी बेस, नो सप्लाई चेन्स इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 3-5 years बैक, एंड नाउ वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई बेसिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आई बिलीव दैट ईवी विल फॉलो सेम पाथ।
Emmanuel, the Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, today launched Ethanol 100, an alternate auto fuel in New Delhi. Mr. Puri said that the green fuels like Ethanol 100, which the Modi government has laid special focus on, will play a key role in sustaining the economic growth of the country. Ethanol 100, a cleaner and greener alternative to gasoline, is a blend of 92-94% ethanol, 4-5% motor spirit to provide color to flame, and 1.5% coarse solvent higher saturated alcohol. The fuel produces lower emissions of greenhouse gases, a reduction by around 63% on well-to-wheel basis.
फरवरी माह के दौरान भारत के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज हुई। भारत का कुल निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 14% बढ़कर $73.55 करोड़ दर्ज हुआ। इस दौरान सिलाई वस्त्र का निर्यात बढ़कर $41.40 करोड़ हो गए, जबकि सेवा क्षेत्र का निर्यात भी बढ़कर $32.15 करोड़ रहा। संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य सचिव सुनील बठवाल ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात पिछले 11 महीनों में उम्मीद से अधिक दर्ज हुआ है। इस बढ़त से भारत की बेहतर संभावनाओं और प्रदर्शन का पता चलता है। वाणिज्य सचिव ने विश्वास जताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का विदेश व्यापार बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये तो निश्चित तौर पर आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे, लेकिन जो 11 महीनों का उच्चतम स्तर अगर आता है तो ये कितना भरोसा, कितना विश्वास जगाता है? खासतौर पर निर्यात के मामले में आमतौर पर हमारा व्यापार घाटा ही रहता था, उसमें को पाटने में अगर इसे मदद मिलती है और निर्यात हमारा बेहतर होता है तो ये कितनी बड़ी उम्मीदें जगाता है?
देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत में जब हम निर्यात की बात करते थे तो वो कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव या बहुत बड़ी फिगर नहीं होती थी, और आप देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा रहता था, जिसको हम आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लिंक कर सकते हैं, तो काफी बड़ा होता था। और मुझे लगता है इस साल हमारा रिकॉर्ड लो लेवल पर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो इसका श्रेय काफी हद तक वो ट्रेड हमारी इंडस्ट्री को जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही डायरेक्शन है। इट विल टेक सम टाइम बिफोर वी बिकम मेजर एक्सपोर्टर, पर मेरा अनुमान है कि जो भारत का जो मार्केट शेयर रिटर्न करते हैं एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड ट्रेड में, वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में विल बी सिग्निफिकेंट।
In more news, Finance Minister Nirmala Sitharaman today highlighted that the current interest in the FDI inflow is at its peak and is projected to grow further. Speaking at a conclave of a private news channel, Mr. Sitharaman underscored the need for greater coordination between the centre, state and local bodies and reforms across sectors that cascade down to the last mile. She further added that empowering people by giving them basic facilities will automatically enable recognition of rights. She said that the government is achieving massive strides in skill training in new age technology, including artificial intelligence and drone technology. The finance minister further added, the government is using various schemes to increase household savings and consumer expenditure. Just briefly, what is your take on the business cycle? Because this time around, GDP has exceeded everyone's expectations, more than 8%.
Absolutely. So I think we are going through this phase of huge growth in India, even when global challenges are there. So as the global economy picks up probably next year, probably we will do better than the projections that we have.
विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में 22 जरूरी कमोडिटीज के लिए मूल्य निगरानी तंत्र की शुरुआत की। इसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 निगरानी केंद्रों के माध्यम से इन कमोडिटीज के मूल्यों की निगरानी की जाएगी। संभवतः उपभोक्ता के मामले में ये एक बेहतर कदम साबित होगा, अगर खासतौर पर जो थोक मूल्य और खुदरा मूल्य, इसकी अगर निगरानी तंत्र इसके लिए डेवलप हो जाता है।
देखिए अमित, मैं ये कहूंगा कि भारत की सारी दुनिया में हमने देखा इन्फ्लेशन को लेकर बहुत चिंताएं थी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया गया, और इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं की और हमारा इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहा, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है।
Moving on to the crude oil market, oil prices edged lower today but were on track to gain over 3% for the week, boosted by the International Energy Agency, IEA, raising its 2024 oil demand forecast and an unexpected decline in U.S. stockpiles. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.84 per barrel. WTI crude price was at $80.68. Per barrel when reports last came in. Very briefly, Puneet, India is now becoming a leading consumer of oil, especially when the government is striving towards converting the internal combustion into electric vehicles. So how do you see this shift in focus with India having a strong leverage in terms of its buying capacity?
So we have seen India leverage the capacity as being the position of being one of the biggest consumers of oil in the world. And to that extent, we have got discounts. We've kept oil prices under control in India, which is really commendable, which was very difficult with all the political factors there. But I think going forward, India will need to develop its other ecosystems, other alternatives. So we're looking at renewable energy, we're looking at electric vehicles. So we need to keep our imports of energy low. And I think we're working towards it, but it will take some time.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 210 रुपए की बढ़त से 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 466 रुपए की मजबूती से 75,692 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना बढ़त से $2,172.90 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी बढ़त से $25.32 प्रति औंस के स्तर पर रही। पुनीत, सोने और चांदी की चमक अगर तकरीबन $2,180 और चांदी अगर $25 से ऊपर रहती है वैश्विक बाजारों में, तो घरेलू मार्केट में आप देख ही रहे हैं 75,000 और बहुत सारी ऐसी ही अभी भी संभावनाएं हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इस वक्त बेहतर और अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, आपका क्या कहना है?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सोने में और चांदी में थोड़ी चमक और रहेगी। इसको खासतौर से चाइना में हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी बाइंग हुई है गोल्ड की, जिसकी वजह से प्राइसेस तो पीछे बढ़ी थी। दूसरा, अगर डॉलर इंडेक्स इंटरेस्ट रेट कम आते हैं यूएस में, डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, उससे भी गोल्ड को पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। तो मुझे लगता है जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव वो काफी ज्यादा है इस साल सोने के लिए।
2200 के आसपास आना कितनी उम्मीदें लगा जाता है, क्योंकि हम आमतौर पर 1900 और 2000 के बढ़ाने में देखा
है। ये रिकॉर्ड लेवल है और ये यहाँ से जब ये आंकड़ा टूटेगा, जब 2200 से ऊपर जाएगा ये डॉलर से, तो एक नया एरिया होगा। टेक्निकली हम ऐसा मानते हैं कि जब भी एक नई टेंशन होती है तो नई ऊंचाइयां छू सकता है।
जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Before we close, a reminder of the headline. The stock markets fall after a day's breather on weak global market trends. Sensex declined 454 points. Nifty ends below 22,100 mark. Government rolls out an e-vehicle policy to encourage and boost domestic manufacturing of e-vehicles. And India's foreign trade for February 2024 exceeds all expectations, boasting the highest export growth in the past 11 months, says Commerce Secretary. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra.